बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के योम शहादत की मुनासिबत से सहर आलमी नेटवर्क की जानिब से हम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है काबुल वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। जिया नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हुकूमती ज़राए ने बताया है कि काबुल वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक हो गया है और इस पर काबुल में अमरीका के सफ़ीर रोयान क्रोकर और अफ़गान सदर के सलामती के मुशीर रंगीन दादफर सपिंता ने दस्तखत कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्मे रसूल ने बताया है कि इस मुआहदे में फ़ौजी तआवुन शामिल नहीं है और दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी तआवुन के बारे में अलग से मुआहदा किया जाएगा। अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने बताया है कि काबुल वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक मुआहदा 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्से में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट, सेनेट और ग्रैंड लोया जरगा की तजावीज़ के मुताबिक तगैरात के इम्कान को मद्देनज़र रखा गया है। अफगान ज़राए के मुताबिक इस मुआहदे में जमहूरी उसूलों की तकवीत, पायदार अमन के इस्तेहकाम, इलाकाई तआवुन की तकवीत, समाजी और इकतसादी शोबों में तआवुन में तौसी और अफगानिस्तान में हुकूमती इदारों की तकवीत जैसे मौजूआत शामिल हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे में अफगानिस्तान के कौमी इकतदार आला के एहतराम, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के हकूक की पासदारी, दीनी अकदार के एहतराम और अक़वाम के दरमियान मसावात पर ताकीद की गई है। उनके मुताबिक इस मुआहदे में अमरीका ने यह वादा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और मनशियात के खिलाफ मुहिम में काबुल की मदद की जाएगी। अफगान वजीर खारजा ने बताया है कि काबुल वाशिंगटन मुआहदे का मतन तैयार हो चुका है, दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने इस पर इत्तेफाक कर लिया है और दोनों मुल्कों के सदर के दस्तखत के बाद इसको अफगानिस्तान और अमरीका दोनों मुल्कों की पार्लियामानों में तौसीक के लिए पेश किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक मुद्दत इसकी 10 साल मद्देनज़र रखी गई है और 2014 से 2024 तक इसका इतलाक होगा, जिसके बाद मुआहदे में फरीकैन की मंजूरी से तौसी की जा सकती है और इसके अलावा दोनों फरीकों की मंजूरी से ये मुआहदा कबल वक्त भी मंसूख किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार कमर आगा साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कमर आगा साहब से करते हैं। कमर आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी कमर आगा साहब, काबुल वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बारे में आपका तज़िया क्या है?
देखिए साहब, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, दुश्वारियां इनको उठानी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि ये जितना भी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है ये महज आर्मी के बीच में है। आर्मी की किस तरीके से हिफाजत कर सकती है, किस तरीके से तालिबान से लड़ेगी, किस तरीके से ये की, इसमें दो प्रॉब्लम आएगी। पहली बात तो ये कि आर्मी महज इंटरनल क्राइसिस से डील करने के लिए जो ट्रेनिंग उसको मिल रही है, इंटरनल क्राइसिस से डील करने की रहेगी और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ ये कि जहाँ तक उसको एक्सटर्नल अगर कोई बाहर से कोई ख़तरा है मुल्क को, तो उसके लिए जिस तरह का नेचर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमेशा उसको बड़ी ताकतों पे, ख़ासतौर से अमेरिका पे मुनहसर रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अपना इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन में, वो महज अफ़गानिस्तान में नहीं है, वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी मौजूदगी बनी रहे। ये अफ़गानिस्तान बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, इसके बॉर्डर एक तरफ ईरान से मिलते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिलते हैं, फिर सेंट्रल एशिया के कई देशों से इसका मिलता है, एक कॉरिडोर इसका चाइना से भी जाके मिलता है, तो बहुत स्ट्रेटजिक मुल्क है। और इस पूरे खित्ते में, ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया का जो खित्ता है, यहाँ पे बहुत बड़ा तेल और गैस का के ज़खीरे भी पाए जाते हैं। ईरान जो कि अमेरिका से जिसकी के रिलेशन बहुत ख़राब हैं, तो अमेरिका की मेन चीज़ ये है कि वहाँ वो चाहता ये है कि किस तरीके से रहे और अपने जो अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उनको वो पूरा करना चाहता है अगले 10 साल में। ख़ास तौर से उसकी नज़र जो है वहाँ के तेल और गैस के जो बड़े भंडार हैं उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर ईरान, खुद अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, स्टील है, दूसरी चीज़ें हैं तो कई ट्रिलियन डॉलर वर्थ की हैं, तो उसके ऊपर भी उसकी ज़रूर से नज़र होगी। उनके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस चाहेंगे कि उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। अगर मुल्क के अंदर आर्मी, किसी भी मुल्क के अंदर आर्मी पड़ी हुई है तो उसकी वो उसमें जो ऑटोनॉमी होती है डिसीजन लेने में, जो उसकी ऑटोनॉमी नहीं रह पाती, उसके पास बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी नहीं होती, वो सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा सकता, इसलिए कि अगर आर्मी किसी बड़ी देश की वहाँ पे पड़ी है तो उसको हर मसले पे कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे इस एग्रीमेंट में भी हुआ। अल्टीमेटली वही हुआ जो अमेरिकन चाह रहे थे, इसलिए कि हुकूमत की कोई हैसियत नहीं रह जाती, जबकि इतने देशों की और ख़ासतौर से वेस्टर्न नेशंस के की अफवाज वहाँ पे मौजूद हों, तो मैं नहीं समझता कोई बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर जब तक आर्मी रहेगी तब तक इंसर्जेंसी चलती रहेगी, इंसर्जेंसी कभी नहीं ख़त्म होगी। अफगान नेशन जो है, अफगान पीपल जो है, ये हमेशा से बहुत मुख्तार रहे हैं अपने, और इनको सेल्फ ऑटोनॉमी पे बहुत नाज रहा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमेशा अगले 10 साल तक ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो में बरसग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर मकसूद सिद्दीकी मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सिद्दीकी साहब, काबुल वाशिंगटन मुजवजा स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बारे में आपकी राय क्या है?
शुक्रिया। जैसे आगा साहब ने फरमाया कि ये तो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर यही है कि जो फ़ौजों का या जो इनकी जो अमेरिका की फ़ौजें हैं और उसके साथ साथ बरतानिया की और दूसरी मुल्क की फ़ौजें, उनके उन्हीं के उन्हीं तक ये मेरे ख़्याल में ये वो है। उसके आगे जो मुल्क की जो बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और जो भी वहाँ के जो अमन अमान कायम करने वाली बात है, उसमें मैं नहीं समझता कि इस स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट से कोई फ़ायदा होगा। बल्कि फिक्र की बात तो ये है कि ये अगर ये इस पे कारजाई साहब के, ओबामा साहब के दस्तखत हो गए, तो मेरे ख़्याल में ये तालिबान का जो सिलसिला है, अभी जो इंसर्जेंसी जिसको कहते हैं, ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और इन ये जो फ़िलहाल अभी से लेकर और 2014 तक जो वक्त दिया गया है कि जिसमें इनकी जितनी कॉम्बैट फोर्सेस हैं अमेरिका की और बरतानिया की और तमाम छोटे मुल्कों की मौजूद रहेंगी, उस वक्त तक मैं समझता हूँ हम देखेंगे कि ये जो जंग हो रही है, अंदरूनी जंग, इसमें काफ़ी तेज़ी शिद्दत इख्तियार कर लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये जो अग्रीमेंट है, इट इज़ नॉट वर्थ द पेपर इज रिटन ऑन, मतलब ये कि जो कागज़ जिसके ऊपर लिखा गया वो भी शायद इससे ज़्यादा जो है उसकी कीमत ज़्यादा हो। क्योंकि अमरीकियों ने, अगर आप इराक़ के बारे में देखें कि उन्होंने जो इराक़ में जो अग्रीमेंट किया था, वो आज तक अमरीकी हुकूमत ने या कांग्रेस ने, सेनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया है। वो किसी वक्त भी अमरीकी जो वहाँ पे अभी मौजूद हैं, और अभी मैं उसके तरफ आता हूँ, जो अमरीका के बेसिस जो इराक़ में अभी तक मौजूद हैं, वो एक तरह से जो शुरू में 2003 में जो इराक़ पे कब्ज़ा किया गया था, मेरे हिसाब से वो एक तरह का कब्ज़ा जो है, जो फ़ौजों का कब्ज़ा है वहाँ पर अभी तक है, और वही हालत अब अफगानिस्तान में होगी। अब तो देखें ना, ये अभी से 2024 की बात कर रहे हैं, यानी 2024 तक तो इनके की जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं अमेरिका की, बरतानिया की और दीगर ममालिक जो इसमें शामिल हैं, वो उनको मौजूद रहना है। जब जब जिस मुल्क में एक और वो ये जो मिलिट्री बेसिस के बारे में जो पॉइंट है कि मिलिट्री बेसिस नहीं होंगे, मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं पूरे अफगानिस्तान में और इस माहदे में उनको हटाने का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो है, जब ये फौजें वहाँ मौजूद रहेंगी और जब उन फौजों के ऊपर अफगानिस्तान का के कानून नाफिज नहीं होंगे, तो आप इन इसकी क्या 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 इसकी क्या वैल्यू है? ये जो है और जो के फिलहाल और जब तक के अफगानिस्तान में जो शदीद करप्शन है हुकूमत में, गाजाए की हुकूमत में, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं किया जाएगा, इसका कोई, यानी ये जो अफगानिस्तान में जो तरक्की नहीं हो रही है उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वो जाहिर है कि वो कब्ज़े में है अमेरिका के, और दूसरा ये कि वहाँ पे जो उन्होंने अपने पिट्ठू बिठाए हुए हैं उनकी हुकूमतों में इतना करप्शन है कि वो उसकी वजह से कुछ मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। पिछले 10 सालों में देखा जाए कि मुल्क ने कोई तरक्की नहीं की, बल्कि वो पीछे चला गया। अब ये देखिए कि जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे और कब्ज़ा किया था अफगानिस्तान पे, उस वक्त तो तालिबान बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, गायब हो गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए तालिबान की कुव्वत कितनी बढ़ गई है कि एक के बाद वो जो प्रोविंसेस हैं वो इनके अमेरिका के कब्ज़े में आते जा रहे हैं। तो यानी जो तालिबान की कुव्वत जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये जो है जिस तरह से इनके पिछले दिनों में इनका रवैया रहा, अमेरिका की फ़ौजों का रहा, जिस तरह से अफगानिस्तान के शहरियों का कत्ल किया गया है और कुरान की बेहरमती की गई है, उसके बाद आप देखें कि पिछले दिनों में जिस तरह से तालिबान ने दिन दहाड़े काबुल पे हमला करके, पार्लियामेंट पे हमला करके, नेटो के बेसिस पे हमला किया, अभी आज आज ये खबर आई है कि 24 तालिबान मारे गए हैं। मकसद ये है कि तालिबान की कुव्वत बढ़ती चली जा रही है, और ये कि इसके ये 130,000 130,000 फौजी में से अगर कुछ फौजियों को वो 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद निकाल भी लें, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो इनके कॉम्बैट फोर्सेज हैं अफगानिस्तान से निकलें, और जब तक कि इनके फौजी अफगानिस्तान में रहेंगे हालात तालिबान जो हैं और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। अमेरिका की हमेशा से दोहरी पॉलिसी रही है, जिसका आपको इल्म है, कि मुझे कोई शक नहीं है कि ये खुद तालिबान की भी फौजी तौर पर मदद कर रहे हैं ताकि वो ताकि इनकी इंसर्जेंसी जारी रहे, उससे अमेरिका को मौका मिले कि वो उन पर हमला करें और फिर ये उनको ये एक वजह उनके सामने उनके पास हो, जस्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, कि वहाँ मौजूदगी का। और आपको याद होगा कि चंद साल पहले तो ये लोग ये बात करते थे कि हम
जी जी
20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, पता नहीं कब तक हम
जी
यहाँ पे अफगानिस्तान में रहेंगे, बरतानिया में भी अमेरिका में भी। तो ये जो अभी तो 2024 की बात हुई है, ये देखिएगा कि कब तक सिलसिला, जब तक कि पूरी तौर से अमरीकी फ़ौजी, बरतानवी फौजी इस खत्ते से नहीं निकल जाएंगे, इस खत्ते में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इलाकों में किसी सूरत से अमन अमान कायम कायम नहीं हो सकता।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया कि हमारा राबिता टेलीफोन लाइन के ज़रिए पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब से हुआ है। आगा मसूद हुसैन साहब
जी, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम जनाब। जनाब ये काबुल और वाशिंगटन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा तैयार किया गया है और जिस पर इब्तदाई तौर पर दस्तखत हो गए हैं, दोनों मुल्कों के सुदूर के दस्तखत इस पर बाकी हैं, इस मुआहदे के बारे में आपकी राय क्या है?
देखिए, मैं पहली बात तो आपकी खिदमत में याद करना चाहता हूँ कि अमेरिका जो है इस खत्ते से नहीं जाएगा
जी,
और यह है कि ये बिल्कुल एक खाम ख्याली है लोगों की कि 2014 में जो है वो पाकिस्तान वो अफगानिस्तान से चला जाएगा, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस रीजन के जितने ममालिक हैं बशमूल ईरान और पाकिस्तान, उनका भी इंटरेस्ट ये नहीं है कि अमरीका जो है फिलहाल यहाँ से चला जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि तालिबान जो है वो तारीफ की इंतहाई कुत है, जो अपने आगे किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। फिर ये वही तालिबान है कि जिन्होंने मजार शरीफ में लोगों को शहीद किया, कत्ल किया। इनके जो सोच है वो इतनी खतरनाक सोच है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि जितने भी अभी एक हाल ही में थिंक टैंक की मीटिंग हुई है कराची के अंदर, वो ये कह रहे थे कि अगर ये चले भी जाते हैं अमेरिकन तो फिर इस अफगानिस्तान का कौन देखेगा। कौन अफगानिस्तान की सूरत हाल को संभालेगा, फिर वही सिविल वॉर होगी और इस रीजन में जितने भी ममालिक हैं वो फिर इससे मुतासर होंगे और खाना जंगी जो है उसकी लपेट में आ जाएगा। तो चुनाचे जो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है अफगानिस्तान के और अमरीका के दरमियान, इस पूरे रीजन के जो ममालिक हैं उनका मफाद इसी में भी है कि ये जो जो अमेरिकन फोर्सेज हैं फौरन ना जाए जब तक कि कोई मुतबादल इंतजाम ना हो जाए। और उस सिलसिले में आपको मालूम है कि चीन भी कोई मदद नहीं करेगा, चीन का अपना इंटरेस्ट ये है कि जिस तरीके से मुमकिन हो वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ के वसाइल पर जो है उससे फायदा उठाए। 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है अफगानिस्तान में, 2.5 बिलियन की इंडिया ने की हुई है। तो आप देखिए कि सूरत हाल क्या है। अब ये सोचना कि भाई गैर मुल्की फौजें चली जाएं वो तो एक आसान जुमला कहने का, लेकिन इसके मुताबादल आप क्या किसी को दे रहे हैं या मुताबिल तौर पर कोई भी ऐसी कुवतें सामने आ जाएंगी जो तालिबान को रोकें और एक खूबसूरत एक अच्छा एक एहसन जो है माशरा वजूद में आ जाए, मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। और इस सिलसिले में आपको मालूम है कि मई में शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये सारे ममालिक जो है फैसला करेंगे कि कितना हम सालाना खर्चा जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं और कौन सी फोर्सेज जो है वहाँ पर रहनी चाहिए, कितनी कॉम्बैट फोर्सेज होनी चाहिए, कितनी फोर्सेज ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो जेरे बहस आएंगी। फिल वक्त अमरीका का कहना यह है कि अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी को मजबूत किया जाए, पुलिस ट्रेनिंग हो जाए और यह है कि एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाए, ये सारी चीजें हैं। और फाइनेंसिस का जो मसला है वो मसला भी जो है वो सारी फोर्सेस करेंगी, इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका चला जाता है तो क्या 1989 का 1989 का सीन दोबारा सामने आ जाएगा, वही कत्लो और वही वॉर लॉर्ड वही बदमाश लोग, तो फिर कौन मतलब ये कि संभालेगा अफगानिस्तान को। तो उसमें तो अब तो दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान खुद तहरीक तालिबान की जद में है, फिर यहाँ से बलूचिस्तान से ईरान से मुख्तलिफ दहशतगर्द जो है हमले करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो देखने काबिल हैं। अगर खुदा नखास्ता एकदम इनखला हुआ तो यहाँ पर बहुत बड़ी खाना जंगी होगी जिस पर के सारे ममालिक जो हैं वो उससे मुतासर हो सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। कमर आगा साहब, जहाँ तक अफगानिस्तान से अफवाज की वापसी या कब्जा खत्म करने का ताल्लुक है, तो अफगान वजीर खारजा ने معاہدے کی جو تفصیلات بتائی ہیں جو موضوعات بتائے ہیں جو اس میں شامل ہیں ان میں قبضہ ختم کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ 2014 میں قبضہ ختم کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فوجی تعاون کے تعلق سے یہ طے پایا ہے کہ اس کے بارے میں الگ سے معاہدہ کیا جائے گا، فوجی تعاون کو اسٹریٹیجک معاہدے میں نہیں رکھا گیا ہے، چاہے وہ افغانستان میں امریکی فوجی اڈوں کی بات ہو یا یہ کہ فوجی تعاون کس طرح سے رہے گا، فوجی تعاون کو اس معاہدے سے الگ کیوں رکھا گیا ہے؟
دیکھیے کئی وجہ ہوتی ہیں، الگ الگ اس کو حصے میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ان کا بیسیکلی جو مقصد یہ ہے کہ فوجی تعاون سب سے امپورٹنٹ ہے ان کا، اس کو الگ انہیں نے رکھا ہے، اس کو الگ امپلیمنٹ کریں گے، اس کو اکنامک اور انٹرنل سیکیورٹی سے لنک کر دیا ہے، لیکن دونوں کے نیچر جو ہیں وہ اسٹریٹجک ہیں، اسٹریٹجک کوآپریشن سے ڈیل کرتے ہیں اور دونوں ہی جو ہیں وہ آرمی سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو الگ الگ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک بار کہنا چاہوں گا، میرے ابھی مجھ سے پہلے پاکستان کے صحافی صاحب بول رہے تھے، دیکھیے جب میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک باہر کے ٹروپس، خاص طور سے امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے ٹروپس افغانستان میں رہیں گے، وہاں پہ انسرجنسی یا ملیٹنسی بنی رہے گی اور پاکستان کے حق میں بھی وہ خلاف رہے گی۔ اگر وہ نکلتے ہیں تو ایسی کوئی آفت کی بات نہیں ہے، ایک ریجنل جتنی کنٹریز ہیں جو کہلاتی ہیں اسٹیک ہولڈرس ہیں، جس میں بہت سے ملک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشیا کے بہت سے ممالک ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، اور بھی بہت سے ملک بن سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، جو ملک یہ سب جڑ کے وہاں کی سیکیورٹی کی گارنٹی لے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو وہاں پہ بہت زیادہ اس کو کوئی کام اتنے سال سے ہے کامیابی نہیں ملی، اس کی وجہ سے اتنے زیادہ انسرجنسی بڑھ گئی۔ ہم لوگوں کو کسی ایشین पर्सपेक्टिव में इसको सोचना पड़ेगा और उसके पर्सपेक्टिव में, रीजनल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, तभी वहाँ पे इंसर्जेंसी ख़त्म होगी, वरना कोई सवाल नहीं। हाँ, अगर अमेरिकन जाते हैं बग़ैर किसी एग्रीमेंट के या किसी उसके, तब तो ज़रूर वहाँ पे क्राइसिस आएगी, इसलिए तालिबान बहुत पावरफुल है, फ़ौरन कब्ज़ा वहाँ पे कर लेंगे, और तालिबान को एक सेक्शन जो है बगल के मुल्क का की भी सपोर्ट है, जहाँ से वो लोग भी चाहते हैं। तो लिहाजा ये है कि एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिकागो के अलावा। एक मैं समझता हूँ कि जब तक एक रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं होगी जो डिसाइड नहीं करेगी फ्यूचर, और अगर ये ट्रूप्स पड़े रहते हैं तो महज अफगानिस्तान के लिए नहीं, मुश्किल तो ये है कि दूसरे मुल्क चाइना वहाँ से मिला हुआ है, ईरान उससे मिला हुआ है, रशिया बिल्कुल करीब में है, इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? ये लोग भी तो बहुत डिस्टर्ब हैं बाहर के ट्रूप्स की वहाँ पर, जिस तरीके से इतने बड़े तादाद में अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन नाटो की प्रेजेंस की वजह से इनको भी एक शिकायत है। तो मैं समझता हूँ पूरे खित्ते की इस वक्त ज़रूरत है, वो उसको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। महज अमेरिकन और अफगान मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइस के ज़रिए यह मसला नहीं हल हो सकता, ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ अगर इसके उसको नहीं सॉल्व किया गया तो क्राइसिस लगातार बढ़ती रहेगी, पूरे खित्ते का उसका असर रहेगा
जी।
और हिंदुस्तान एक करीब मुल्क है, हिंदुस्तान का इसके ऊपर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अगर मिलिटेंसी बढ़ती है तो उससे डायरेक्ट हम लोग इफेक्टेड होते हैं
जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जनाब, ये जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जो जिस पर अभी दोनों मुल्कों के सुदूर को दस्तखत करने हैं, ये दोनों मुल्कों के सुदूर के दस्तखत के बाद दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट में ये पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की मंजूरी उसमें ज़रूरी है। जाहिर है कि पार्लियामेंट में बहस होगी, उसके मुंदरजात सामने आएंगे। फौजी मुआहदे को, फौजी तआवुन को जो इस मुआहदे से अलग रखा गया है, कहीं इसका मकसद ये तो नहीं है कि उसकी तफसीलात, क्योंकि अगर फौजी तआवुन की तफसीलात भी फिर पार्लियामेंट में आएंगी और अमरीका ये ना चाहता हो कि फौजी तआवुन की तफसीलात कि अफगानिस्तान में उसके कितने फौजी अड्डे होंगे, कितनी अफवाज इसके बाद बाकी रहेंगी, फौजी तआवुन की नौइयत क्या होगी, इसके सिलसिले में इबहाम बाकी रहे और ये तफसीलात दुनिया के सामने ना आए।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ये तो है ही, बल्कि मैं तो ये कह दूं कि अभी से जैसे कि मसलन इसके अंदर एक क्लॉज ये है कि ये जो रात में हमले होते हैं, अमरीकी फौजी हमला करते हैं और हमला करके लोगों को घरों से निकाल के कत्ल करते हैं या हिरासत में लेते हैं, उन्होंने अमेरिका ने हालांकि इसकी जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन ये हमको सबको मालूम है कि वो दरअसल जब ये फाइनल बीन पे जो दस्तखत हो जाएंगे दोनों सदरों के, तो अमेरिका फौजों का कोई इरादा नहीं है कि इस चीज़ में कोई कमी आएगी। तो ये जो है, और दूसरी चीज़ जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि इराक में जो मुआहदा हुआ है उसकी अभी तक उसका रेटिफिकेशन अमेरिका की पार्लियामेंट में या कांग्रेस में नहीं हुआ। अब देखना ये है कि जब इस पर ओबामा साहब के और कारजाई साहब के दस्तखत हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट वो तो उसको रेटिफाई कर देगी, लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता कि ये अमरीका की कांग्रेस में या सेनेट में तक पहुँचेगा भी, क्योंकि इसका वही हशर होना है मेरे हिसाब से जो कि इराक के मुआहदे का हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अगर आपकी इजाज़त हो एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कि तालिबान ये जो इतने मजबूत और इतने ख़तरनाक ये क्यों हुए, ये उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ अमरीकी की जो पॉलिसी वहाँ पर अफगानिस्तान में रही है उसने, जैसे कि जहाँ जब इन्होंने इराक का भी वही हुआ था कि जिस तरह जिस सख्त जब उन्होंने सख्ती से दबाया और हर मुल्क में ये अमेरिका का ये रहा कि इन्होंने ये जो कोशिश की है कि ज़ाहरी तौर पे हम इंसर्जेंट्स को दबाएं, उसी वजह से और ज़्यादा उनको हिमायत मिली लोगों की और तालिबान अब इतने ज़्यादा अभी नहीं उनकी जो अब शक्ल है वो इतनी मजबूत है। और अब ये कि इसका मतलब ये है कि तालिबान चूँकि अब इतने स्ट्रांग हैं तो अफगानिस्तान को सारी अभी से लेकर आखिर तक जो है वो अमरीकी फ़ौजों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा अपनी हिफाजत के लिए, ऐसा नहीं है। जो 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 ये एक चीज़ हकीकत तो ये है कि तालिबान को ये मानना पड़ेगा कि ये इनका उनको बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल है लोगों की। उनका मुल्ला उमर के ज़माने में कितना भी बहुत ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड था वो हमको सबको इल्म है इस बात का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शुरू से कि ये ज़रूरी था जो बात शुरू हुई थी कि इन लोगों को अपने जो डायलॉग में जो पीस प्रोसेस था उसमें शामिल किया जाता जो जिसका जिसमें थोड़ा सा सऊदी अरब वगैरह ने मिलकर उसमें कोशिश की थी, और कतर में इनका ऑफिस वगैरह भी कायम हुआ था, और उनको अपने साथ लेके इनको ये अगर समझा जाए कि हम के अफगानिस्तान में कभी भी हुकूमत कोई बगैर तालिबान के से मिल के काम किए हुए के रह सकती है, यह नामुमकिन है। देखिए ये अब एक एक प्रोविंस के बाद दूसरा प्रोविंस ये ले रहे हैं अमेरिका के फौज। अमेरिका को कोई माने ना माने तालिबान ने शिकस्त दे दी है। वो तो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर कुछ हिस्सों में अमेरिका का कब्ज़ा है। जिस तरह से अमेरिकी फ़ौजी मारे जा रहे हैं, अमेरिकी लोगों को ये पसंद नहीं है। अभी अभी एक पोल हुआ था अमेरिका में, उन्होंने हाल ही में उन्होंने देखा कि उसमें 30% लोगों ने सिर्फ हिमायत की अमेरिकी फ़ौजों की वहाँ मौजूदगी की, और 70% इसके ख़िलाफ़ हैं। ये लोएस्ट यानी कम से यानी बहुत ही कम इसकी तादाद है अमरीकी लोगों की। ये अमेरिका की फ़ौजी को वहाँ से निकलना पड़ेगा, और ज़रूरी ये होगा कि तालिबान के साथ बैठ के उनको उनसे मज़ाकरात किए जाएं, और उनको अपने जो 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 ओवरऑल प्रोसेस है उसमें उनको शामिल किया जाए, क्योंकि ये सारे वक्त तालिबान से लड़ नहीं सकते, और जितना तालिबान से लड़ेंगे उतने ज़्यादा तालिबान जो हैं और मज़बूत होते जाएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब।
जी
जनाब, अफ़गानिस्तान के बाज़ हलकों ने फौजी तआवुन को इस मुआहदे से अलग रखने पर तश्वीश ज़ाहिर की है, और उनका कहना यह है कि फौजी तआवुन का मुआहदा शफाफ ना होना और सिलसिले में इबहाम बाकी रखना, बहुत बाकी इबहाम का बाकी रहना, यह बहुत से शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। अफ़गान ज़राए का कहना है कि अमरीका कम से कम 7 फौजी अड्डे अफगानिस्तान में बाकी रखना चाहता है, और उसी के साथ उसकी ये भी कोशिश है कि 2014 के बाद भी अमरीकी फौजियों को अफगान कानून और अदालतों से इस्तिस्ना हासिल रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने बात पहले भी आप दर्ज किया था कि देखिए हम तो काबुल जाते रहते हैं, हमारे जो दोनों तबसरा निगार हैं इनको वहाँ की जमीनी हकायक का बिल्कुल पता नहीं है। अभी एक साहब कह रहे थे कि रीजनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, कितनी मतलब रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है अफगानिस्तान से मुतालिक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर इसके बाद रशिया हुई। देखिए बात दरअसल ये है कि आप एक बात जो मैं जो लोगों से पूछता हूँ जिसका किसी के पास भी जवाब नहीं है, वो ये है कि अगर अमरीका चला जाता है तो फिर इस खिलाफ को कौन पूरा करेगा? क्या तालिबान पूरा करेंगे? और तालिबान का जो तरीके कर रहा है वो भी आपको मालूम है, और सारी दुनिया जानती है कि ये कौन लोग हैं। तो चुनाचे सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि अमरीकी फौजें मौजूद हैं। जाहिर है जब तक अमरीकी फौजें मौजूद होंगी वहां जंग जारी रहेगी और कोई इसमें शुबा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि फिर मुतबादल क्या है? फिर दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि साहब वो जो जंगी जंग से मुतालिक जो शिक है उसको गैर शफाफ रखा गया, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अमरीका 3 बेसिस जो है वो जरूर रखेगा अफगानिस्तान के अंदर, और तीनों बेसिस के सिलसिले में आपको एक तो 3 बेस रखेगा, दूसरा 25,000 जो है अमरीकी फौजी नॉन कम्बेंट जो है ना फौजी वहां पर रहेंगे। इस पर किसी किस्म का मतलब ये कि अभी काबुल में किस किस्म की बातें हुई थी, काबुल का जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एक मिडिल क्लास जो है जो आहिस्ता आहिस्ता उभरा है, वो कभी नहीं जाएगा अमेरिका जो है चला जाए। हमने कितने लोगों से काबुल में इंटरव्यू किए, वो कहते हैं कि भाई हमने जो तालीम में तरक्की की है, जो तालीम में हमारी तरक्की हुई है, जो मुख्य तौर पर हम लोग कम अज कम आगे बढ़े हैं, ये तो आके इसको तबाह कर देंगे। फिर जो खवातीन को हुकूक मिले हैं, जो बच्चों को हुकूक मिले हैं, ये तालिबान आके छीन लेंगे, फिर वो औरतों को जो है ना ये बंद कर देंगे। तो मैं यस कर रहा हूँ कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो तालिबान है ये जंग करते रहेंगे, और उसका वाहिद हल ये है कि साहब मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात आपको मालूम है नाकाम हुए कतर में, मतलब ये कि कोशिश की गई, अब फिर एक बार कोशिश की जा रही है कि कोई एक ऐसा राह निकले जिसके अंदर मॉडरेट तालिबान को जो है शामिल करके हुकूमत बनाई जाए। लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत दिन लगेंगे। शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बड़ी अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि हम अफगानिस्तान की आर्मी को मजबूत करें, आर्मी अफगानिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को मजबूत करें, आप अफगानिस्तान की जो उभरती हुई मिडिल क्लास है उसको मजबूत करें, तब जाके जो है हालात सुधरेंगे। लेकिन ये कहना कि तालिबान जो है वो बड़ी कुव्वत रखते हैं, ये जाहिल और जंगजू लोग हैं, इनका कोई इंटेलेक्चुअलिज्म से ताल्लुक नहीं है, ये पूरे रीजन को तबाह कर देंगे अगर इनको ये इजाजत मिली। तो मुतबादल क्यादत जब तक नहीं आएगी, कोई मुतबादल हुकूमत नहीं बनेगी, और उस वक्त कोई गारंटी नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को इस तरीके से छोड़ देना मुनासिब नहीं है। चीन भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, ईरान की भी ये ख्वाहिश है कि इस तरीके से तालिबान को जो है नहीं मिलना चाहिए, और जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उन सब के ये ख्याल आते हैं। और आप अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप जब जब मई में शिकागो में कॉन्फ्रेंस होगी आप देखिएगा सारी चीजें सामने आ जाएंगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। कमर आगा साहब, जनाब क्या कहेंगे आगा मसूद हुसैन साहब के बात के जवाब में? जहां तक ईरान का सवाल है तो ईरान तालिबान को नापसंद करता है लेकिन अमेरिका का कब्जा भी नहीं चाहता है।
इसका तरीका इस तरीके से नहीं होता। मैं ये नहीं, नहीं नहीं, हम लोग भी तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करते किसी, हम तो ना इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की थीसिस में भी हम नहीं यकीन करते। हम लोग जानते थे कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं कतर में ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। देखिए इतना डिफीटिस्ट नहीं होना चाहिए, उसके तरीके होते हैं रोकने के। तालिबान को फंडिंग बंद होनी चाहिए, इनको जो वेपन मिल रहा है बगल से और दूसरे देशों से वो बंद होना चाहिए, अरब मुल्कों पे प्रेशर डालना चाहिए कि वो इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं छिप के जो आ रही है तमाम दीगर अरब मुल्कों से उनके ऊपर सैंक्शन अगर लगाते हैं तो कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं, धीरे धीरे उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। एक रीजनल अल्टरनेटिव अगर नहीं होगा तो फिर ये भी तैयार रहिए कि वहाँ पे अमेरिका रहेगा हमेशा, और पाकिस्तान को भी मुसीबत है अमेरिका से, और बगल में ईरान है उनको भी, हमको तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमारे पड़ोस में है, हमारे बल्कि अच्छे रिलेशन है अमेरिका से, हमें कोई आफत नहीं है इस तरह की। लेकिन हाँ, इन दोनों देशों का क्या होगा, और बगल में चाइना है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो हमको किसी न किसी स्टेज के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल या परसों या किसी दिन, या मैं शिकागो कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हूँ, मेरा कहना ये है कि हम लोग को अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और अगर सोल्यूशन नहीं ला पाते हैं तो ये प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। इसलिए जब तक अमेरिकन है तब तक तालिबान रहेंगे। अगर अमेरिकन ट्रूप्स ना आते, मेरा कहना तो ये है कि ये एक साल दो साल में इनको अफगान की जनता उखाड़ के फेंक देती, और ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ये महज उनके ट्रिप्स के आने के बाद दोबारा इनको लाइफ मिली है, और इनके साथ हज़ारों ऐसे लोग हैं जो तालिबान से उनका लेना देना नहीं है, उनको ज्वाइन कर रखा है क्योंकि ये अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कैश 22 वाली सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसको ब्रेक करना होगा, और महज इस खत्ते के मुल्क ही ब्रेक कर सकते हैं, और कोई इसके अलावा जरिया नहीं है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जनाब मुआहदे में अफगानिस्तान के कौमी इख्तदार आला और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम की बात की गई है, लेकिन अगर अमेरिका, जैसा कि अफगान ज़राए कहते हैं, अफगानिस्तान में 7 फौजी अड्डे रखता है, या आगा मसूद हुसैन साहब के बकौल कम से कम 3 फौजी अड्डे बाकी रखता है, और उसके 25,000 फौजी वहाँ पर बाकी रहते हैं, और उसी के साथ इन फौजियों को अदालती इस्तिस्ना भी हासिल रहता है, तो फिर अफगानिस्तान का इख्तदार आला और खुद मुख्तारी के क्या मानी होंगे?
उसके कोई माने नहीं होंगे। और ये कि अफगानी लोगों को अब उनको समझ आ गई, वो कितने भी जाहिल और उजड़ हों, उसमें उनको इतनी समझ आ गई है कि जब इतने फौजी अड्डे होंगे, और मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि ये 7 फौजी अड्डों की जो बात है वो सही है, क्योंकि आपको शायद इल्म है कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद अमरीका के 5 फौजी अड्डे से बगदाद के इर्द गिर्द हैं, तो वो उसको नहीं हटा पाए, तो फौजी अड्डे अमरीका को वहाँ पर रखने हैं अपने। और देखिए अब 2001 से लेकर अभी तक जो अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, अब उसको ये मौका, अब वो ये चाहता है कि हमको मौका मिले कि हम अब खुद अफगानिस्तान से खास तौर पर फ़ायदा उठाएं। अफगानिस्तान में की जो अपनी जो उनकी हीरा जवाहरात और मिनरल की जो 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 वैल्यू है वो करीब $3 trillion की बताई जाती है, तो ये 25,000 फौजी और ये अड्डों का रखने की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि इस दौरान में, यानी 2014 से लेकर 2024 तक, तो कम से कम वो तो बात हो गई है कि जितना ज़्यादा लूट पहले तो अभी तो लोगों को तो जाने लिए हैं इंसानों की, अब लूट मार उनकी शुरू होगी जिससे उनका सोना और हीरा जवाहरात निकालने के लिए। लेकिन जो आपका सवाल था इसमें कोई शक नहीं है कि जब अफगानियों के की बात उनके सामने आएगी कि इतने अमरीकी फ़ौजी अभी भी हैं और उनके ऊपर अफगानी कानून लागू नहीं होता, और वो जब जो जितना जो उनका उसमें स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट में ये भी है कि जो अगर बाहर से कोई अफगानिस्तान पे किसी किस्म का फौजी दबाव पड़ा तो उसका जवाब देने के लिए अमरीकी फौजी होंगे, तो क्योंकि इसको आप किस तरह की इंडिपेंडेंस या खुद मुख्तारी या ऑटोनॉमी कह सकते हैं। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं, कभी शक नहीं था कि ये सारे मसले जो हैं ये अमेरिका के मौजूदगी के वहाँ वजह से हुए हैं और वहाँ पे। और ये जो अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान 2001 से पहले तालिबान को सपोर्ट नहीं करते तो तालिबान उस वक्त ख़त्म हो चुके होते, जैसा अभी हमने सुना कि जो इस्लामी ममालिक जो इस वक्त जो तालिबान को असलहा दे रहे हैं, जो तालिबान को की माली मदद कर रहे हैं, अगर वो इसको रोक दें तो तालिबान पर बहुत दबाव पड़ सकता है। और ये कि चलिए ठीक, मैंने माना कि कोई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तालिबान नहीं है, सारे तालिबान एक्सट्रीमिस्ट हैं मजहबी तौर पे, उसमें कोई शक नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन उनके ऊपर अगर सऊदी अरब का और पाकिस्तान का यानी 2001 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको अगर सपोर्ट नहीं होती तो जिस तरह से उन्होंने ज़्यादतियाँ औरतों के साथ और भी मर्दों के साथ, तो जिस तरह से उन्होंने एक्सट्रीम पता नहीं कौन से इस्लाम के लॉज लेके आ गए थे, मेरे ख्याल में अब वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तालिबान को हुकूमत मिलनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत में उनकी शमूलियत जो है उसके बगैर अफ़गानिस्तान में सही तरीके की अफ़गानिस्तान को कभी आज़ादी अमेरिका से या फॉरेन फोर्सेस से नहीं मिल सकती। और 7 अड्डे जो हैं फौजी अड्डे, ये मैं समझता हूँ लाजमी ज़रूर अमेरिका कोशिश करेगा और इसको उससे भी अमेरिका से जान छुड़ाना जो है बहुत ही मुश्किल होगा अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये जो 2014 से लेकर 2024 तक का जो 10 साल का जो उन्होंने पीरियड दिया है इसके बारे में बहुत खुल के बात होनी चाहिए। और जो शिकागो में जो डील हो रही है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें सिर्फ ये नहीं, उसमें ये भी है कि अफ़गानिस्तान की माली मदद की भी बात है। कारज़ाई साहब ने $2 बिलियन मांगे हैं, इन खर्चा तकरीबन 4 बिलियन का है और अमेरिका को ये देखना है कि ये कहाँ से आएगा। मैं समझता हूँ ये पैसे, ये जितना जो खर्चा है जो अफ़गानिस्तान में होगा ये सब अफ़गानिस्तान की हीरा जवाहरात और उसके मिनरल्स वगैरह को लूट के, उसी से जैसे इराक़ में हो रहा है इराक़ का तेल लूट के, अब उनका काम ये होगा कि अफ़गानिस्तान के जो मिनरल रिसोर्स उसको लूटने का। तो नहीं, अमेरिका को तो मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। जब तक अमेरिका इस खत्ते से नहीं निकलेगा यहाँ पे अमन अमान कायम नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है इस वक्त इसकी वजह से पाकिस्तान की आई हुई है, अमेरिका की यहाँ मौजूदगी की वजह से।
जी आगा मसूद हुसैन साहब
जी,
जनाब स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत अफगानिस्तान के मुआसलाती शोबे का कंट्रोल और सिक्योरिटी के उमूर अमरीका के पास रहेंगे। मुखालिफिन का कहना है कि इस सूरत में भी अफगानिस्तान का कौमी इख्तदार आला और खुद मुख्तारी बेमाना हो जाती है, क्या कहते हैं आप इस बारे में?
देखिए मैं आपको बताऊं, आप दरअसल अफगानिस्तान को तो उस वक्त समझना चाहिए जब कोई अफगानिस्तान में खुद जाए। देखिए हम लोग तो जाते रहते हैं, देखिए मैं आपको समझता हूँ, कोई शख्स भी ये पसंद नहीं करता कि गैर मुल्की फौजें किसी मुल्क में हों। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों को नहीं रहना चाहिए, ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तालिबान भी इसीलिए जंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या मुतबादल निज़ाम देना चाहते हैं? आप अफगानिस्तान को क्या वाकई उन वॉरलॉर्ड्स को देना चाहते हैं, उन जंगजू लोगों को देना चाहते हैं जो सेवा करेंगे, जो औरतों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे और लोगों को बिल्कुल एक कब्रिस्तान के सुनसान इलाकों में तब्दील कर देंगे पूरे अफगानिस्तान को? देखिए हमें सोचना चाहिए। बात दरअसल ये है कि अमरीका खुद नहीं रहना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से अमरीका की इकोनॉमी डाउन हुई है, जिस तरीके से वहां पर इकतसादी बहरान आए हुए अमेरिका में और यूरोप में, वो खुद भी नहीं रहना चाहते। और यही है कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में यही बात डिस्कस होगी कि किस तरीके से वो यहाँ से पीसफुल एग्जिट स्ट्रेटेजी अपनाता है। वो चाहते हैं कि तालिबान जरूर शामिल हो, पाकिस्तान भी इसमें मदद कर रहा है। आपको मालूम है हिलरी क्लिंटन ने तो कहा है कि अगर पाकिस्तान हक्कानी ग्रुप को अगर शामिल करा देता है तो वो बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री है। तो और जहां तक सऊदी अरब की भी पूरी कोशिश, क्योंकि आपको मालूम है कि सऊदी अरब का पूरा इख्तदार आला भी वो अमेरिका की मरहून मिन्नत पे है, तो चुनाचे सऊदी अरब नहीं चाहता कि एक ऐसे तालिबान आ जाए कि जो इस पूरे रीजन के अंदर जो है दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जो इससे पहले 4-5 साल पहला हुई थी। तो बात सिर्फ इतनी है कि किस तरीके से अमरीका की ख्वाहिश है कि इन सारे ग्रुप को मिला के एक ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि उसमें इन लोगों को भी शामिल किया जाए और इसके बाद यह है कि फिर एक रीजनल स्टेबिलिटी सामने आए। देखिए मैं चीन का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, चीन कभी नहीं चाहेगा कि इस पूरे माहदे में कि वो तालिबान वहां पर आ जाए। $5 बिलियन की चीन की इन्वेस्टमेंट है, $2.5 बिलियन की हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट यूरोपियन ममालिक की भी है। तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि निजाम अमेरिका के पास हो, चाहे कम्युनिकेशन का निजाम किसी नाटो के फोर्सेज के पास हो, बात सिर्फ इतनी है कि आप क्या एक मुतबादल निजाम देखना चाहते हैं, वहां करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है। और जहां तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, अभी मेरे एक भाई साहब फरमा रहे थे, ना तो सऊदी अरब पैसे दे रहा है उनको, ना पाकिस्तान असलाई दे रहा है। दरअसल ये कि ये कराची में बैठ के $200 मिलियन की किडनैपिंग करते हैं और हशीश लेकर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वहां से फिर बाहर यूरोप में जाती है। आप पढ़ लीजिए वेबसाइट पे इनकी कि किस तरीके से कराची में किडनैपिंग करते हैं, और उसके बाद ये कि रैनसम लेके और फिर उसका वो जो पैसा है वो तालिबान को देते हैं। इनकी वेबसाइट में कल ही इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें पैसों की कमी है और हमें पैसे दिए जाए। तो ये भयानक सूरत हाल है, और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम एक ऐसी क्यादत सामने आते हैं जिसमें कि सब शामिल हो, कारजाई कोई अच्छा आदमी नहीं है, कारजाई तो अमेरिका का एजेंट है, लेकिन कोई एक ऐसा शिकागो में कोई ऐसा मुतबादल आ जाए जिसकी के लोगों को उम्मीद है, तो अगर वो तालिबान को और ऐसे तालिबान को कि जो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ रीजन की फतेह है बल्कि अफगानिस्तान के आवाम की फतेह है, जो कि एक पुरामन माशरा देखना चाहते हैं, तालीम देखना चाहते हैं, सेहत के शोबे में तरक्की देखना चाहते हैं। ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि इस्लामी ममालिक का कोई रोल है, अफगानिस्तान में इस्लामी ममालिक का कोई रोल नहीं है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कमर आगा साहब, जनाब हमारे पास 2 मिनट का वक्त है। बाज हल्के इस मुआहदे को अफगानिस्तान पर कब्जे के नए दौर और नए इस्तेमार से ताबीर करते हैं, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? 2 मिनट का वक्त है हमारे पास।
देखिए सबसे पहले तो मैं अजी मैं एक मिनट में सब सबसे पहले मैं आगा साहब का रिप्लाई करूंगा, मोहतरम है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहना कि इस्लामिक ममालिक का वहाँ कोई रोल नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है
जी।
सारे इस्लामिक मुल्क जितने भी हैं, ज़्यादातर खासतौर से कंजर्वेटिव, ये जो पर्शियन गल्फ के रीजन में है, ये तालिबान को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर उनको वो नहीं चाहते कि इस पूरे खत्ते में अगर तालिबान ख़त्म होते हैं, वहाँ पे एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आती है या वहाँ पे एक लोकल हुकूमत आती है, डेमोक्रेसी आती है, तो वहाँ पे अरब का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। इसलिए लिहाजा वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो खुद पैसा हुकूमत नहीं देती, लेकिन वहाँ के बड़े बिजनेसमैन पैसा मुहैया कराते हैं, वो भी ऑयल मनी है उसका दूसरी तरफ। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक कि क्वेटा शोरा, जो कि पाकिस्तान में बैठी हुई है, और जब तक के हक्कानी नेटवर्क, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जिसको वहाँ से पैसे भी मिल रहे हैं, ये चलता रहेगा, अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसे ही बनी रहेगी। लिहाजा मेरा मानना यह है कि जब तक के वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगी, इसकी कुंजी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के ऊपर जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बहुत सख्त लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। वो उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की हुकूमत और वहाँ के कट्टरपंथी जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी उसके लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। वही नहीं बल्कि पूरे खत्ते में, हमारे मुल्क में भी उसकी वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी और बुरान मचा हुआ है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर मखसूस सिद्दीकी और आगा मखसूस हुसैन के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तजिया निगारों के ख्याल आपने मुलाहजा फरमाए। बहरहाल ये बहुत ही मशकूक किस्म का स्ट्रेटेजिक मुआहदा है। इसकी जो तफसीलात बताई गई हैं इनमें कब्ज़ा ख़त्म करने की बात कहीं भी नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि जिस पर अफ़गान हलकों को तशवीश है वो ये कि फ़ौजी तआवुन को इस मुआहदे से अलग रख के अमरीका ने एक इबहाम की सी कैफियत पैदा कर दी है, जो ख़ास तौर पर अफ़गानियों के लिए काफ़ी तशवीशनाक है, और इस सिलसिले में उन्हें काफ़ी तहफ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है अंदाज़ _जहान@ISARTV.IR। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।